दिन भर 10 अगस्त शुक्रवार सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। संशोधित 3 तलाक विधेयक पर राज्यसभा की मोहर लगना बाकी, विधेयक शीतकालीन सत्र तक टला।
जो 3 संशोधन लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा है और इसी से बिल पास होना चाहिए। कांग्रेस से भी ये कहूंगी कि वो हम मुस्लिम महिलाओं का साथ दे।
रफाल लड़ाकू विमान सौदे में कथित घोटाले की जांच के लिए मोदी सरकार पर JPC बनाने का दबाव।
जब भी इस तरह का कोई संदेह हुआ है किसी परचेज पर या घोटाले पर, उस पे JPC बनती आई है।
और विवेचना में याद करेंगे उस दिन को जब जापान के 2 शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार आदर्श राठौर से। आज संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया। राज्यसभा में आज 3 तलाक विधेयक भी पेश नहीं किया गया, इसे शीतकालीन सत्र के लिए टाल दिया गया है। बहुचर्चित आरुषि तलवार हत्याकांड में माता पिता राजेश और नुपुर तलवार को बरी किए जाने के खिलाफ CBI की ओर से दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 1 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया था। केरल में भारी बारिश के कारण अब तक कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है। मानसूनी बारिश के कारण कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। प्रशासन का कहना है कि लगभग 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा है, जिनके लिए 200 से ज्यादा राहत कैंप बनाए गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने हालात को गंभीर बताया है। मुजफ्फरपुर और देवरिया के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक NGO संचालक द्वारा कथित तौर पर एक मूक बधिर युवती से बलात्कार का मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शुरह नियाजी।
करीब 1 साल से हॉस्टल का संचालक अश्विनी शर्मा धार की युवती के साथ कथित बलात्कार कर रहा था। वहीं इंदौर की 2 युवतियों ने भी अश्विनी शर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार सुबह वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर प्रदेश भर के बाल संरक्षण गृहों और अनाथालयों की जाँच के आदेश दिए हैं।
ऐसे जितने भी आश्रय स्थल हैं उनका हर महीने निरीक्षण होगा, क्योंकि कौन वैसी कहां बैठा हो आज इसका ठिकाना नहीं है।
प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता शोभा ओझा ने आरोप लगाया कि इस मामले में आरोपी को सरकार का संरक्षण प्राप्त है।
मूक बधिर बच्ची जब न्याय की मांग कर रही थी तो उसकी दोषी को छुपा के रखा जा रहा था, उस हॉस्टल को तुरंत खाली करवा लिया गया।
आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, दूसरी युवतियों से भी पूछताछ की जा रही है।
भोपाल से जानकारी दे रहे थे शुरह नियाजी। अब से कुछ ही देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तुर्की पर स्टील और एल्युमिनियम का आयात शुल्क 2 गुना कर रहे हैं। तुर्की की अर्थव्यवस्था को और दबाव में डालने वाला ये कदम उस समय उठाया गया है जब यहां की मुद्रा लीरा में पिछले 24 घंटों में डॉलर के मुकाबले 10% गिरावट आई है। पिछले 1 साल में लीरा में लगातार गिरावट आ रही है और इस दौरान इसमें 40% से ज्यादा की गिरावट आई है। निवेशक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन महंगाई कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने को तैयार नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इन हालात को आर्थिक युद्ध करार देते हुए देशवासियों से विदेशी मुद्रा बदलवाने की अपील की है।
Bu bakımdan yastık altındaki dövizleri.
अगर आपके पास डॉलर, यूरो या सोना है तो तुरंत बैंक जाइए और उसे तुर्की की लीरा में बदलवाइए। ये देश लड़ाई लड़ रहा है, हमें इसमें एकजुट रहना होगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन के शब्द। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने यमन में हुए उस हमले की निंदा की है जिसमें स्कूल बस पर सवार 29 बच्चों की मौत हो गई है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने गुरुवार को हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले को वैध सैन्य कार्रवाई बताया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस घटना की निंदा करते हुए स्वतंत्र जांच की जरूरत बताई है। घायल बच्चों को सादा प्रांत के जिस अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया वहां के निदेशक अहमद अल मंसूरी ने कहा, बच्चों के इस नरसंहार पर हम कह सकते हैं कि सादा में ये तबाही मचाई गई है। हमलावरों ने कई सारे बच्चों को ले जा रही उस बस को उस समय निशाना बनाया जब वो दुकानदारों और लोगों से भरे सादा के बाजार से गुजर रही थी। ये थे सादा प्रांत के प्रमुख अस्पताल के निदेशक के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। कनाडा के फ्रेडरिक्टन की पुलिस का कहना है कि शूटिंग की घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज राज्यसभा में 3 तलाक विधेयक पेश नहीं किया गया और इसके साथ ही ये तय हो गया कि इस विधेयक पर अब संसद के शीतकालीन सत्र में ही चर्चा हो पाएगी। मोदी सरकार ने एक दिन पहले ही इस विधेयक में कुछ संशोधन किए थे जिन पर राज्यसभा की मोहर अभी तक नहीं लगी है। दिल्ली से भूमिका राय की रिपोर्ट।
राज्यसभा में आज संशोधित 3 तलाक बिल पेश किया जाना था, लेकिन अब इसे शीतकालीन सत्र तक के लिए टाल दिया गया है। इससे एक दिन पहले ही कैबिनेट ने 3 तलाक से जुड़े बिल में 3 संशोधनों को मंजूरी दी थी। अगर आज बिल राज्यसभा में पारित हो भी जाता तो राष्ट्रपति के पास जाने से पहले इस संशोधित बिल को एक बार फिर लोकसभा में पास कराना होता और उसके बाद कहीं जाकर ये कानून की शक्ल लेता। बिल के टल जाने से आतिया साबरी बहुत दुखी हैं। आतिया उन 5 महिलाओं में से एक हैं जो एक बार में 3 तलाक के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जब तक बिल राज्यसभा में पेश नहीं हुआ था आतिया बहुत खुश थी।
उन्होंने जो फैसला लिया है और जो 3 संशोधन लेकर आई है बहुत ही अच्छा है और इसी से ये बिल पास होना चाहिए। और मैं कांग्रेस से भी ये कहूंगी कि वो हम मुस्लिम महिलाओं का साथ दें और इस बिल को पास होने में तहे दिल से वो हमारे इस जो ये फैसला सरकार दे रही है इसमें वो पूरा सहयोग दें।
भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की अध्यक्ष जकिया सोमन भी शीतकालीन सत्र तक के लिए बिल के टल जाने से दुखी हैं।
ये कानून पास करने में हमने आजादी के बाद 70 सालों की देरी कर दी है और पार्लियामेंट को चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को चाहिए कि इसे अर्जेंट बेसिस पे पास करें। तो मुझे उम्मीद है इस बार नहीं हो पाया लेकिन अगले सेशन में इसको पूर्ण बहुमति से इसको पास किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक बार में 3 तलाक को असंवैधानिक करार दे चुका है। कैबिनेट ने इस बिल में जिन संशोधनों को मंजूरी दी है उनके मुताबिक पत्नी को एक बार में 3 तलाक देने के दोषी पति को जमानत मिलने का प्रावधान बिल में जोड़ा जाएगा। अगर कोई पति किसी महिला को 3 तलाक देता है तब पीड़िता या उसके परिवार के लोगों की शिकायत पर ही FIR दर्ज होगी और अगर पति पत्नी अपने मतभेद सुलझाना चाहते हैं तो कुछ नियम शर्तों पर मजिस्ट्रेट के पास अपराध माफ कर देने का अधिकार होगा। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफर याब जिलानी मानते हैं कि ये पूरा बिल ही गलत है।
हमारा स्टैंड ये था कि ये पूरा बिल जो है डिफेक्टिव है। इसमें शुरुआत से ही जो डेफिनेशन दी गई है ट्रिपल डाइवर्स की वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 22 अगस्त 2017 का वो ये कह चुका है कि एक वक्त में 3 तलाक इस तरह से देना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिहाज से वो तलाक कोई ही नहीं तो उसको जुर्म कैसे करार दिया जा रहा है।
जफरयाब जिलानी की ही तरह मुंबई की मुस्लिम महिला संगठन बेबाक कलेक्टिव की हसीना खान भी बिल्कुल सही नहीं मानती।
देखिए अगर आप मुसलमान औरतों की बात कर रहे हैं, औरतों के सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो ये 4 साल में जिन औरतों के साथ का जो बुरा हाल हमने देखा है सेक्सुअल वायलेंस से, चाहे सेक्सुअल अब्यूज से, जिस किस किस्म से वायलेंसेस में, सरकार ने उस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया है। तो ये सरकार का ये बहुत बड़ा विचार है, बहुत बड़ा इंटेंशन है कि इस बिल के जरिए मुसलमान समाज को, मुसलमान मर्दों को टारगेट कर सके और मुसलमान समाज के अंदर एक पोलराइजेशन पैदा कर सके जहाँ पे मुसलमान औरतें जो स्ट्रगल करके कोर्ट में जा रही है अपने हक की लड़ाई लड़ रही है उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा सरकार ने दिया है।
राज्यसभा में आम सहमति नहीं बन पाने के कारण मानसून सत्र के आखिरी दिन 3 तलाक बिल को भले ही अगले सत्र के लिए टाल दिया गया हो लेकिन सरकार के पास इस पर अध्यादेश लाने का विकल्प अब भी है। भूमिका राय, BBC दिल्ली।
रफाल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश आज भी जारी रखी। विपक्ष रक्षा सौदे में कथित घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC बनाने की मांग कर रहा है। इस मांग को लेकर आज कुछ विपक्षी दलों ने प्रदर्शन भी किया। दिल्ली से ही BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
पिछले कई दिनों से इस मामले को उठाने की कोशिश और उस पर राज्यसभा सभापति द्वारा मना किए जाने को लेकर कांग्रेस ने पहले ही वेंकैया नायडू के नाश्ते की दावत का बायकॉट कर रखा था और फिर उसके और कई दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने रफाल लड़ाकू विमान सौदे में हुई कथित गड़बड़ी के विरोध में आज धरना प्रदर्शन भी किया। संसद के सामने हुए प्रदर्शन में कांग्रेस के अलावा सीपीआई और आम आदमी पार्टी के नेता भी हम जेपीसी की मांग करते हैं और रफाल सौदे में घोटाला हुआ जैसे बैनर लिए शामिल दिखे। प्रदर्शन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल थीं और पार्टी ने इसे सदन में भी उठाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सौदे पर संयुक्त संसदीय समिति बनाए जाने की मांग की।
इस सदन में मैं देख रहा हूं कि इंदिरा गांधी से राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक जब भी इस तरह का कोई विपक्ष की तरफ से मांग हुई है, कोई संदेह हुआ है, कोई शक हुआ है किसी परचेज पर या घोटाले पर, उस पर जेपीसी बनती आई है। ये बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, इस पे जेपीसी होने चाहिए।
लेकिन सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं दिखा। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री विजय गोयल ने कहा,
संसद एलिगेशन लगाने के लिए नहीं है। अगर आप झूठे एलिगेशन लगाएंगे, आप प्रधानमंत्री का नाम लेंगे, आपके पास कोई सबूत नहीं होंगे और आप बेवजह इन आरोपों को उठाएंगे किसी को, कृपया आपको इजाजत नहीं दी जा सकती है।
कांग्रेस की तरफ से मामले को लोकसभा में उठाया सुनील कुमार जाखड़ ने।
डील फॉर 126 रफाल एयरक्राफ्ट
126 रफाल विमान के लिए हुए सौदे को प्रधानमंत्री ने रद्द कर दिया और 36 विमान खरीदने का फैसला किया और इन 36 विमानों के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं वो 126 विमानों की कीमत के बराबर हैं। ये मामला जरूर अदालत में जाएगा। ये थे कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ के शब्द। रफाल लड़ाकू विमान सौदे में कथित घोटाले का मामला कांग्रेस पहले भी उठाती रही है और राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया था। मोदी सरकार कहती रही है कि इस मामले में फ्रांस और भारत के बीच सौदे को लेकर गोपनीयता की शर्त है। राहुल गांधी ने इसे गलत बताया था, लेकिन कुछ ही घंटों में सरकार ने फ्रांस के राष्ट्रपति के उस बयान को पेश कर दिया जिसमें गोपनीयता की शर्त वाली बात दोहराई गई थी। सत्ता पक्ष ने इस मामले पर गलत बयानी करने के लिए राहुल गांधी से माफी मांगने की बात भी कही, लेकिन चंद दिनों पहले बीजेपी के दो पूर्व मंत्रियों अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि गोपनीयता की शर्त सिर्फ तकनीकी पक्ष को लेकर है, न कि पूरे सौदे की कीमत पर, जिसमें एक विशेष बिजनेस घराने को विमान से संबंधित ठेका दिलाकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी इंडिया बोल।
राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा सदस्य हरिवंश को सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया और वो जीते भी। क्या इस घटनाक्रम का मतलब है एनडीए के खिलाफ महागठबंधन की हवा निकल गई है? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 11 अगस्त शनिवार शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। 73 वर्ष पहले 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। आज की विवेचना में सुनिए उस त्रासदी का आंखों देखा वर्णन रेहान फजल की जुबानी।
४५ आते आते एक आम जापानी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। दुकानों में अंडे, दूध, चाय और कॉफी पूरी तरह से गायब हो चुके थे। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका था। सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ पैदल चलते लोग, साइकिलें और सैनिक वाहन दिखाई देते थे। 6 अगस्त 1945 की सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते एक अमरीकी विमान को देख लिया। पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए और खतरे के सायरन बज उठे। इस जहाज को हिरोशिमा के मौसम की टो लेने भेजा गया था। जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उस विमान को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। अमरीकी विमान ने पीछे आते विमानों को कोडेड संदेश भेजा, ऑल वेल। आठ बजते बजते खतरे के सायरन बजने बंद हो गए। 8:09 पर B-29 एनोला गे विमान उड़ा रहे कर्नल पॉल टिबेट्स ने इंटरकॉम पर घोषणा की, अपने गॉगल्स लगा लीजिए और उन्हें अपने माथे पर रखिए। ठीक 8:13 पर एनोला गे के बॉम्बार्डियर मेजर थॉमस फेरबी के हेडफोन पर कर्नल पॉल टिबेट्स का संदेश सुनाई दिया, इट इज ऑल योर्स। फेरबी को जैसे ही अपना लक्ष्य अओई ब्रिज दिखाई दिया, वो चिल्लाए, आई हैव गॉट इट। ठीक 8:15 पर एनोला गे से नाक के बल लिटिल बॉय एटम बम हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। इसको नीचे आने में पूरे 43 सेकेंड लगे। तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य अओई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वो शीमार सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। बम फटते ही हिरोशिमा के लोगों पर क्या बीती, क्रेग कोली ने अपनी किताब नागासाकी द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट एंड अननोइंग में लिखा है।
इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी और जब यह फटा तो तापमान अचानक 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा और ऊपर उड़ रहे विमान द ग्रेट आर्टिस्ट के पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी ने एक विशाल आग का गोला बनता देखा। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के भीतर ध्वस्त हो गईं। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी कि 80,000 लोग मौत के गर्त में समा गए। जैसे ही धमाका हुआ, एनोला गे के आगे के केबिन में रोशनी फैल गई और पायलट पॉल टिबेट्स ने अपने दांतों में एक अजीब सी सिहरन महसूस की। विमान के पिछले हिस्से में बैठे हुए टेल गनर बॉब कैरन ने अपना कोडक कैमरा उठाया और नीचे के दृश्य की तस्वीरें लेने लगे। नीचे के बैगनी बादलों के बीच सफेद धुएं का एक रेला 3,000 फीट तक उठा और उसने एक मशरूम की शक्ल ले ली। एनोला गे के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉग बुक में लिखा, माई गॉड वॉट वी हैव डन। एनोला बे के वेपेनियर विलियम पार्सन्स ने एक कूट संदेश भेजा, परिणाम सफल, विमान में हालात सामान्य।
एनोला गे के कप्तान पॉल टिबेट्स ने बाद में BBC से बात करते हुए कहा,
It was something that the imagination really couldn't comprehend.
ये कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या कहूँ, बम गिराने के बाद चंद सेकंड के लिए मैंने पलट कर उसे देखा और आगे चल दिया। मैंने धुएं के बादल और तेजी से फैलती हुई आग देखी। धुएं के गुब्बार ने बड़ी तेजी से शहर को अपनी चपेट में ले लिया।
अमरीकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने रेडियो पर हिरोशिमा पर एटम बम गिराए जाने का ऐलान किया।
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy.
अब से कुछ देर पहले एक अमरीकी जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिराकर दुश्मन के यहाँ भारी तबाही मचाई है। ये बम 20,000 TNT क्षमता का था और अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से 2,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस बम के साथ ही हमें हथियारों की श्रृंखला में एक नया क्रांतिकारी विध्वंसक हथियार मिल गया है जो हमारी सेनाओं को मजबूती देगा। इस समय इस बम का उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही इससे भी ज्यादा खतरनाक बमों पर काम किया जा रहा है। ये परमाणु बम है जिसमें ब्रह्मांड की शक्ति है।
जिस समय बम गिरा, एक स्कूली छात्रा जिंको क्लाइन अपने कुछ दोस्तों के साथ हिरोशिमा रेलवे स्टेशन के पास खड़ी थी।
I had a tremendous explosion. I must have been unconscious for a while. When I came to myself, painful screams for help from everywhere came into my ears.
मैंने एक जोर का धमाका सुना। कुछ समय के लिए मैं बेहोश हो गई।
जब मुझे होश आया तो देखा हर तरफ से मदद के लिए चीखती दर्दनाक आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ और मैंने भी चीखना शुरू कर दिया। इसी समय हिरोशिमा स्टेशन भरभरा कर गिर पड़ा। मैं भागने लगी। मुझे लगा कि आग का गोला मेरा पीछा कर रहा है। तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। वो मेरी एक सहेली की आवाज थी। वो मलबे में दबी थी। मैंने उसे खींचकर बाहर निकालने की भरसक कोशिश की, लेकिन तभी वो आग की चपेट में आ गई। उसके हाथ ने मेरे हाथ को खींच रखा था। भरी आंखों के साथ मैंने किसी तरह से अपना हाथ खींचा और फिर भागने लगी। पीछे उसकी चीखती हुई आवाज धीरे धीरे आग और धमाकों के शोर में गुम हो गई। भागते भागते मैं एक पहाड़ी पर पहुंची जहां पर तमाम घायल जले हुए लोग कराह रहे थे। मैं उनके और लाशों के ढेर के बीच कहीं पड़ी थी। शाम को करीब 5 बजे मैं अपने पिता और माँ के पास किसी तरह पहुंची। रास्ते भर में मुझे जले हुए शव नदी में तैरती हुई लाशें दिखी। शहर से बाहर रहने वाले मेरे पिता तो बच गए, लेकिन मेरी माँ बुरी तरह घायल थी। कुछ दिनों के बाद मेरे पूरे शरीर पर बैंगनी चकत्ते पड़ गए। मेरे सारे बाल गिर चुके थे। चेहरा विकृत हो चुका था।
उधर 37 वर्षीय स्थानीय पत्रकार सातोशी नाकामुरा भाग्यशाली थे कि उन्होंने उस दिन हिरोशिमा से थोड़ी दूर अपने दोस्त के साथ रात बिताई थी। क्रेग कोली ने अपनी किताब में लिखा,
जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा तो उसके असर से वो जमीन पर गिर पड़े और उनके चेहरे को टूटे हुए शीशों ने घायल कर दिया। उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ बढ़ने लगे। वो हिरोशिमा की बर्बादी देखने वाले पहले पत्रकार थे। उन्होंने डोमी समाचार एजेंसी के ओकायामा दफ्तर में पहला डिस्पैच डिक्टेट कराया। 8:16 पर दुश्मन के 2 विमानों ने हिरोशिमा पर एक खास बम गिराया है। हिरोशिमा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और करीब 1,70,000 लोग हताहत हुए हैं। जब डोमी के ब्यूरो चीफ ने यह सुना तो उन्होंने नाकामुरा से कहा कि यह सच नहीं हो सकता कि एक बम से हिरोशिमा में इतने लोग मर गए। उन्होंने उनसे कहा कि वो अपनी रिपोर्ट में हताहतों की संख्या बदल दें, क्योंकि सेना इसे मानने से इनकार कर रही है। नाकामुरा ने टेलीफोन लाइन पर चिल्लाते हुए कहा, सेना मूर्ख है।
3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को एक और B-29 बम वर्षक एक और परमाणु बम लिए जापान के औद्योगिक नगर कोकुरा के ऊपर पहुंचा। विमान के कप्तान ग्रुप कैप्टन लियोनार्ड चेशर ने BBC को बताया,
When we got to the primary target and it was partially under cloud and we received a message they were abandoning that and going on to the secondary target which was next.
हमने उड़ान भरी। जब हम मुख्य निशाने पर पहुंचे तो वहां पर बादल थे। तभी हमें इस जगह को छोड़ने का संदेश मिला और हम दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़े जो कि नागासाकी था।
चालक दल ने बम गिराने वाले स्वचालित उपकरण को चालू कर दिया और कुछ ही क्षणों में 4,050 किलो का भीमकाय एटम बम फैटमैन तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। 52 सेकंड तक गिरते रहने के बाद बम पृथ्वी की सतह से 500 फीट की ऊंचाई पर फटा। घड़ी में समय था 11:02। शहर के बाहर कुछ ब्रिटानी युद्धबंदी खदानों में काम कर रहे थे। उन्होंने BBC को बताया,
Very, very quiet. And we just stood there and looked. Dead people lying around you. You know, we knew that something.
हर तरफ लोगों की लाशें ही लाशें थीं। हमें पता चल चुका था कि कुछ तो असाधारण घटा है। लोगों के चेहरे हाथ पैर गल रहे थे। हमने इससे पहले परमाणु बम के बारे में कभी नहीं सुना था।
इस विस्फोट में बच जाने वाले एक और शख्स थे हितोशी टोकाई। घटना के 50 साल बाद उन्होंने उसे याद किया।
I wonder if you have seen any picture of hell. Well,
पता नहीं आपने कभी नर्क की तस्वीर देखी है या नहीं। नागासाकी उस दिन ऐसा था मानो वहां नर्क उतर आया हो। मैंने उस जगह जाने की कोशिश की जहां कभी मेरा घर हुआ करता था। मेरी सबसे बड़ी चिंता थी कि मेरे माता पिता कहाँ हैं, मेरी बहन कहाँ है। जब मैं अपने घर के सामने से गुजरा तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। हर चीज धराशायी हो चुकी थी। मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। मैं कैथोलिक धर्म को मानता हूँ जहाँ मरने वालों को दफनाने की परंपरा है। मैं इसे पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास दफनाने के लिए कुछ भी नहीं था।
बम गिरने के केंद्र बिंदु के 1 किलोमीटर क्षेत्र की एक एक चीज या तो भाप बनकर उड़ गई या कार्बन बन गई। लगभग 74,000 लोग इस हमले में मारे गए और इतनी ही संख्या में लोग घायल हुए। क्रेग कोली ने अपनी किताब नागासाकी द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट एंड अनोइंग में लिखा,
तब तक लोगों ने परमाणु बम का नाम तक नहीं सुना था। उन्हें लगा कि आसमान में सूरज फट गया है। अस्पताल के बाहर कोई भी चीज पहचान में नहीं आ रही थी। वहां मौजूद सुनियो तोमिता ने नीचे गिरे अपने दोस्त कामातो को उसके कंधों से उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ में उनके कंधे का मांस आ गया और फिर वो नीचे गिर पड़े। ज्यादातर मरने वाले या मरते हुए लोगों के मुंह से झागदार खून निकल रहा था। तोमिता उनके बीच जाकर उन्हें पानी देते हुए उनका हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो और प्रोफेसर सिकी ही जिंदा बचे थे। उनके चारों ओर करीब 20 लाशें बिछी हुई थीं, जहां तक देखो आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही थीं। विस्फोट स्थल से करीब 1,500 मीटर दूर एक टॉर्पीडो फैक्ट्री में मित्सुई तकिनो भी जमीन पर गिरी बेहोश पड़ी थी। उन्हें जब होश आया तो उन्हें चारों ओर लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उनके ऊपर ढेर सारा मलबा गिरा पड़ा था। बहुत मशक्कत के बाद वो अपने दाहिने हाथ को आजाद करवा पाने में सफल हो पाई। उन्हें नीचे फर्श पर कुछ नमी महसूस हुई। जब उन्होंने अपने सिर को छुआ तो उन्होंने पाया कि फर्श पर उनका ही खून फैला था और वो उसके बीच खड़ी थी।
उस दिन अमरीकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने रेडियो पर फिर देश को संबोधित किया, लेकिन इस भाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि अमरीका ने उसी दिन जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया है।
जापानियों को अब तक पता चल चुका होगा कि हमारा परमाणु बम क्या कर सकता है। अगर जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके अन्य युद्ध प्रतिष्ठानों पर हमला किया जाएगा और दुर्भाग्य से इसमें हजारों नागरिक मारे जाएंगे।
दो परमाणु हमलों और 8 अगस्त 1945 को सोवियत संघ द्वारा जापान के विरुद्ध मोर्चा खोल देने पर जापान के सामने कोई चारा नहीं बचा। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और अब खेल समाचार। ज्योतिका सिंह स्टूडियो में आ चुकी हैं। बताया ज्योतिका, खेलों की दुनिया में आज क्या हलचल है?
जी, मैं शुरुआत करना चाहूंगी क्रिकेट से। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 8 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 15 रन बना लिए हैं।
बारिश का साया रहा आज? नहीं रहा।
रहा बिल्कुल, अभी बारिश की वजह से ही मैच रुका हुआ है। बारिश के बाद जब पुजारा ने 9वें ओवर में रन आउट हुए तो टीम इंडिया की मुश्किलें और भी बढ़ गई थी। बारिश रुकने के बाद मैच फिर शुरू हुआ, लेकिन केवल 2 ओवरों का ही खेल हो पाया। इस दौरान भारत ने चेतेश्वर पुजारा के रूप में अपना 3रा विकेट खोया। उन्हें ओली पोप ने रन आउट किया। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही और मैच के पहले ही ओवर में जेम्स एंडरसन ने एक खूबसूरत गेंद पर मुरली विजय को बोल्ड किया। मुरली जब आउट हुए तो उस समय टीम इंडिया और विजय का खाता भी नहीं खुला था कि 7वें ओवर में जेम्स एंडरसन ने लोकेश राहुल को भी पेविलियन भेजकर भारत को दूसरा झटका दिया। लोकेश राहुल 8 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी 14 गेंदों की पारी में 2 चौके लगाए। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी वरिष्ठ खेल पत्रकार मदन लाल से और जाना कि इस मैच से क्या उम्मीद रखी जा सकती है।
एक्सपेक्ट तो अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि जो हमने गलतियां की हैं लास्ट 8 मैच में वो नहीं होनी चाहिए। और देखिए, अगर वो इस बार अगर मैच में अगर वो अच्छा नहीं करते तो वो मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, फिर तो सीरीज को बचाना ही मुश्किल होगा।
अब मैच कैसे होगा बारिश के बाद तो देखा जाएगा।
ज्योतिका सिंह से खेल समाचार सुनने के बाद सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुनेंगे आदर्श राठौड़ से।
बीबीसी समाचार। आज संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया। राज्यसभा में आज तीन तलाक विधेयक पेश नहीं किया गया। बहुचर्चित आरुषि तलवार हत्याकांड में माता पिता राजेश और नुपुर तलवार को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। केरल में भारी बारिश के कारण अब तक कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर और देवरिया के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक एनजीओ संचालक द्वारा कथित तौर पर एक मूकबधिर युवती के बलात्कार का मामला सामने आया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। अगला प्रसारण नमस्कार भारत, समय जानते हैं आप भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।